மங்களம் பகிவானி வீரோ மங்களம் தோத மோகணி மங்களம் சுந்தர குந்தாரியோ சர்வ கல்யாண காரிகம் பிரதானம் சர்வ தர்மானாம் ஏதம் ஜெயது நம சமய வந்தே து சௌவசீதே கோமச்சல மனோவயம் கதிம் பத்தி கோச்சாமி சமய பாவு
भगवान कुंद कुंद आचार्य देव के द्वारा किसी धन्य घड़ी में रचा गया ये महान परमागम समय सारणी शास्त्र है। अत्यंत अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव अनादि अज्ञान का त्याग करके ज्ञानी धर्मात्मा मोक्ष मार्ग का पथिक केवली प्रभु का लघु नंदन कैसे बन जाए वो विषय इस ग्रंथ में अपने चलता है। पूरा समय सार इसी एक उद्देश्य को लेकर के बनाया गया है। उद्देश्य तो बोलते हैं समय से के आज समय सार तो भरत क्षेत्र का भगवान है। कर्ता कर्म अधिकार का प्रवचन प्रारंभ किया ना तो पहला उद्गार उनका ही निकला आ भरत आ समय सार तो भरत क्षेत्र में भगवान छे। केवली परमात्मा का विरज इस परमागम ने भुला दिया। ऐसा अद्भुत परमागम है इसकी 31 नंबर की गाथा पर अपनी चर्चा प्रारंभ होगी आपसे। इसके पहले इतनी बातें सब आ चुकी तीर्थंकर भगवान की शरीर के माध्यम से की जाने वाली स्तुति वह वास्तव में केवली परमात्मा की स्तुति नहीं है, है ना? क्योंकि शरीर के गुण आत्मा के गुण नहीं होते। तो केवली की परमार्थ स्तुति क्या है तो उसमें दो अर्थ किए थे। देखो जब शरीर के अपनी अपेक्षा से तो केवली के आत्मा की स्तुति करो चाहे केवली के शरीर की स्तुति करो वो दोनों व्यवहार है क्योंकि पर है। लेकिन उस पर और पर में अंतर अगर उस पर में ही अपन चर्चा करें तो उनका जो शरीर है और उनका जो आत्मा है तो शरीर की स्तुति वो व्यवहार स्तुति और आत्मा की स्तुति परमार्थ स्तुति। वो किस अपेक्षा से केवली परमात्मा की अपेक्षा से मतलब केवली परमात्मा के आत्मा के गुण वो वास्तव में केवली के गुण है और शरीर के गुण वास्तव में केवली के गुण नहीं है। इसलिए शरीर के माध्यम से स्तुति की जाने वाली स्तुति को व्यवहार स्तुति कहा और उसके पीछे भी अपन ने चर्चा की थी कि क्यों कहा जो केवली परमात्मा होते हैं ना वैसा लोकोत्तर शरीर में लौकिक जीवों को साधारण जीवों को नहीं प्राप्त हो ऐसा शरीर भी उन केवली परमात्मा को ही प्राप्त हो संयोग रूप में भी ऐसा शरीर केवली परमात्मा को मिलता है। इसलिए केवली भगवान की भी शरीर के माध्यम से स्तुति की गई वो असद्भूत व्यवहार नहीं से की गई स्थिति है और क्योंकि आत्मा के गुण तो वो वास्तव में केवली के गुण है तो वो वास्तव केवली की परमार्थ स्थिति है। लेकिन वो परमार्थ स्थिति कल भी मैंने थोड़ी चर्चा की थी परमार्थ स्थिति और व्यवहार स्थिति हमारे लिए तो दोनों व्यवहार स्थिति है। क्यों हमारे लिए व्यवहार स्थिति है कि हमारे लिए तो जैसा केवली का शरीर पर है वैसा ही केवली का आत्मा भी पर है। हमारे लिए तो उनका आत्मा भी पर और उनका शरीर भी पर। अब उनके लिए उनका आत्मा स्व और उनके लिए उनका शरीर पर, आगे अंतर समझाएंगे है ना। और हमारे लिए तो उनका आत्मा भी पर और शरीर भी पर। जब ये बात कही गुरुदेव श्री बताते थे किसी एक सज्जन का नाम, वो उनको ये बात असर दी थी, अरे देवशास्त्र गुरु पर। तो वो दो बातें इसमें, देवशास्त्र गुरु पर कहा भैया, देवशास्त्र और गुरु भी पर। तो वो तो शुद्ध है फिर भी पर, शुद्ध होने पर भी वे पर है। शुद्ध होने पर भी अशुद्ध है तो उनके लिए शुद्ध है ना, मेरे लिए तो वे परद्रव्य, मेरे लिए तो वे परद्रव्य हैं। और आगे बढ़ के बात कहें तो परद्रव्य के लक्ष्य से पर दब्बा दो दुर्गई, परद्रव्य के लक्ष्य से दुर्गति होती है। दुर्गति का मतलब क्या होता है, चैतन्य की गति नहीं होती। स्वर्ग मिले भले, कषाय की मंदता हो परद्रव्य के लक्ष्य से कषाय की मंदता हो, भले स्वर्ग मिले, लेकिन स्वर्ग भी चैतन्य की गति नहीं है, वो दुर्गति है। और जब इस बात को जब ये किस रूप में कहा जाता है, उसके पीछे का उद्देश्य तो यही है कि जगत के जीव परद्रव्य का लक्ष्य छोड़कर अपने शुद्धात्मा के लक्ष्य में आए। अब ये काम तो करेंगे और ये काम तो करेंगे स्वच्छंदता से बोले, तो वो तो देवसाज गुरु पर है। तो किसी ने प्रश्न किया मुक्ति के मार्ग गुरुदेव श्री के प्रवचन है सत्ता स्वरूप, उसमें किसी ने प्रश्न किया कि साहब आप तो कहते हो देवसाज गुरु तो परद्रव्य है, तो परद्रव्य है इसलिए हमें उनके प्रति बहुमान का भाव नहीं है, वो तो परद्रव्य है ना। तो गुरुदेव ने कहा हाँ तूने स्वद्रव्य परद्रव्य की बहुत अच्छी पहचान की बेटा, कि देव शास्त्र गुरु परद्रव्य है ये बात शत प्रतिशत सत्य है, लेकिन तेरे स्त्री पुत्रादि भी परद्रव्य है, ये भी तुझे ख्याल है कि नहीं ऐसा है कि उनके प्रति तुझे राग आवे, उनके प्रति तुझे अनुराग आवे, और देव शास्त्र गुरु का अनुराग नहीं आवे, अभी तो तेरी राग की दिशा नहीं बदली, तेरी दशा क्या बदलेगी। यहाँ तो वो बात कह रहे हैं कि अरियंत परमात्मा के प्रति भक्ति का विकल्प आवे, कहते वो भी दुर्गति है, चैतन्य की गति नहीं है। और ये बात कहने वाले विश्व में हमारे अरियंत परमात्मा ही है, दूसरे देवों की ताकत नहीं है ये बात कह देगा, हमारी और भी तुम्हारा लक्ष्य जाएगा तो तुम्हारी दुर्गति होगी। समझ आ गया। तो हमें ऐसे अरियंत परमात्मा के प्रति जिन्होंने हमें ये बताया कि हमारे प्रति भी तेरा लक्ष्य जाएगा तो तेरी दुर्गति होगी, तो ऐसे वीतरागी परमात्मा के प्रति बहुमान आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, तो उनके प्रति यदि हमारे को बहुमान आएगा तो वे हमें उनके बहुमान में भी खड़े नहीं रहने देंगे, तो कहेंगे तू आत्मा में जा। और इन रागियों के प्रति हमें बहुमान आएगा, संसार के प्राणियों के प्रति बहुमान आएगा, परिवार के प्रति बहुमान आएगा, रिश्तेदार नातेदारों के प्रति आएगा। ये क्या करेंगे, ये तो हमें राग में खींचे बिना नहीं रहेंगे। रागी किसे कहते हैं, जो राग में खींचे अपने को, रागी। और वीतरागी जो अपने को वीतरागता की प्रेरणा दे, भले हम वीतरागता करें कि नहीं करें, भगवान की प्रतिमा को देख करके हम वीतराग भाव करें कि नहीं करें, लेकिन वीतरागता की प्रेरणा तो इनसे मिलती ही है। आगे समझना, ये है बात। तो अब आगे देखिए, जब इतनी सब बातें हो गई, ये सब बातें होने के बाद फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि ठीक है अभी तक हमने आपकी सारी बात सुनी समझी और ये अच्छी तरह हमने समझ लिया कि शरीर का स्तवन केवली का स्तवन नहीं है, है ना, उनके गुणों का आत्मा के गुण नहीं है, ये सब बातें हमने समझ ली। तो अब हमारा प्रश्न ये होता है कि तो तब तीर्थंकर केवली की निश्चय स्तुति कहते हैं। क्या कहते हैं आप? तीर्थंकर केवली की निश्चय स्तुति। वास्तविक स्तुति क्या है? तो वो कहते हैं कि हम वो बात कहते हैं और उसमें पहले ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार करके स्तुति करते हैं। ये थोड़ी चर्चा शुरू की थी अपने। तीन तरह के दोष तो अपनी जो 31, 32 और 33 नंबर की गाथा चलनी है उसमें पहले नंबर का ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष। ज्ञेय अलग है और ज्ञायक अलग है। ज्ञेय भिन्न और ज्ञायक भिन्न। सर्वथा भिन्न के कथनचित भिन्न सर्वथा है ना। उन दोनों को संकर, संकर माने ज्ञेय ज्ञायक को एक में एक अनुभव करता अर्थात दोनों को मिक्स करता है। ऐसे दोष का परिहार करने की पहली स्तुति मतलब पहले ज्ञेय ज्ञायक की भिन्नता है। और उसके बाद आगे की जो दो स्तुतियां आई उन दो स्तुतियों में जो पहली नंबर की उसमें जो पहली स्तुति है उसमें भाव्य भावक संकर दोष को दूर करके अभाव करके नहीं दूर करके भाव्य भावक भावक माने कर्म का उदय और भाव्य माने उस उदय का अनुसरण करके होने वाले परिणाम। उसमें गुरुदेव कहेंगे ये रागादि परिणाम होते हैं ना ये भावक का भाव्य है ये ज्ञायक का भाव्य नहीं। भगवान आत्मा का अनुसरण करके नहीं होते। तो एक पहले नंबर में भाव्य भावक उसके बाद भाव्य भावक संकर दोष को दूर करके स्तुति की गई है और तीसरी स्तुति में भाव्य भावक संकर दोष का अभाव करके स्तुति की गई। ध्यान से सुनना कि तीन प्रकार की जो स्तुति आई इसमें दो प्रकार की स्तुति तो प्रत्येक मोक्ष मार्गी को होती है। पहली ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष की स्तुति उसका परिहार करके होने वाली स्तुति जो अपनी चर्चा कर रही चलेगी और दूसरी भाव्य भावक दोष का अभाव करके होने वाली स्तुति। यानी 31 नंबर की गाथा में वर्णित और 33 नंबर की गाथा में वर्णित 32 नंबर की गाथा में वर्णित स्तुति हो भी और नहीं भी उसके होने और नहीं होने से मोक्ष मार्ग में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो होने पर भी जब तक 33 नंबर वाली गाथा वाली स्तुति नहीं होगी मोक्ष तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उत्सव श्रेणी की बात है। आइए अब इसमें एक बात और कि ये ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष बना रहे और भाव्य भावक संकर दोष का अभाव हो जाए ऐसा कभी नहीं। वो सीधी सी बात कि दर्शन मोह बना रहे और चारित्र मोह का अभाव हो जाए ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन में यह आमना है कि सबसे पहले बड़ा पाप छुड़ाया जाता है। हमारी नजर कहां जाती है? तो हमारी नजर चारित्र मोह के दोष को कम करने पर और बाहर में कसाई की मंदता हो हमें ऐसा लगे तो हमारी नजर उस पर तो रहती है लेकिन दर्शन मोह जो महादोष है उस पर हमारी नजर नहीं रहती और दर्शन मोह के अभाव के बिना मिथ्यात्व के अभाव के बिना चारित्र की चारित्र का उपदेश वह क्रम भंग उपदेश है। ये समझ लेना बहुत अच्छी। तो फिर क्या करें कि सम्यक दर्शन नहीं हो तो इंतजार करें कि सम्यक दर्शन नहीं हो तो सम्यक दर्शन के लिए तत्व निर्णय का और तत्व निर्णय के लिए तत्वाभ्यास का और तत्वाभ्यास के लिए तत्व श्रवण का प्रयास जीवन में करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कहा अभी समय दर्शन नहीं हुआ तो हमको अनुभव ले लेंगे, हमको महाव्रत ले लेंगे, हम तो ये कर लेंगे कि तुम कर तो लोगे लेकिन करने पर भी कुछ होगा। नौवें ग्रह तो ऐसी जगह है आनंद क्रम भंग उपदेश। भाई लोक में क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए अंचना पानी पीना अच्छी बात है कि बुरी बात है, बुरी बात है तो अंचना पानी का त्याग करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन उसके पहले मदिरा का पान करता हो कोई व्यक्ति और पानी छान के पीता क्या कहता हो, मदिरा का पान करता हो लेकिन मैं पानी छान के पीता हूँ, वो बात आता है कि महीने में एक आध बार, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, जेनी का एक भी लक्षण बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कि भाई पानी छान के पीना बहुत अच्छी बात है, निषेध नहीं है, उसका होना ही चाहिए, लेकिन पानी छान के पीने के पहले मदिरा पान का त्याग होना आवश्यक। मिथ्यात्व है, गेय गया एक संकर दोष है, ये मदिरा पान जैसा दोष है। क्या कहा, कैसा दोष है, मदिरा पान जैसा दोष है। और भाव में भावक संकर दोष है ना, वो अनछने पानी जैसा दोष है। अब पानी को बहुत छान छान करके पीने लगा लेकिन भाई साहब मदिरा पान तो छोड़ दो पहले। तो वो जो गुरुदेव श्री के अनंत उपकार अपन लोगों पे हैं, उनमें सबसे बड़ा उपकार ये है तो उन्होंने इस जगत को इस मिथ्यात्व जैसे महाभयंकर पाप की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है। कोई कहता ही नहीं था ये बात, मिथ्यात्व भी पाप है, मिथ्यात्व भी पाप नहीं, मिथ्यात्व ही पाप है, बाकी के पांच पाप तो उस मिथ्यात्व के ही भाई बंधु है। आया तो ये यहाँ पर जो पहले नंबर के दोष अब आ गए ना, तो पहले नंबर का जो ये पहली स्तुति आई, ये पहली स्तुति इंद्रियों को जीतने वाली बात है। अब वो बहुत बढ़िया बात है, देखिए क्या कह रहे आचार्य देव, जिनेन्द्र परमात्मा की निश्चय स्तुति क्या है, वो यहाँ पे कह रहे हैं। अब तीर्थंकर केवली की निश्चय स्तुति कहते हैं, उसमें पहले गेय गय शंकर दोष का परिहार करके स्तुति कहते हैं, गाथा पढ़ेंगे अपन। जो इंद्रिये जीता नान सहावा दियं मुर्दि आदम तम खलु जीनी जिनिंदियं ते अनंति जेणि चिदासाहु कर इंद्रिय जय ज्ञान सहावरु अधिक जाने आत्म को निश्चय विशेषित साधु जन आते जितेंद्रिय उन्हीं को। निश्चय नय में स्थित साधु किने जितेंद्रिय कहते हैं, वो बात समझे जरा अपन, वे किने जितेंद्रिय कहते हैं। उन्होंने कहा जो इंद्रियों को जीत कर, अभी इंद्रिय शब्द में से आचार्य अमृत चंद्र देव तीन अर्थ निकाले है ना, और आचार्य अमृत चंद्र देव के इन्हीं तीन ग्रंथों के आधार पर लोगों ने अनेक प्रकार की टीका टिप्पणी की कि देखो कुंडकुंद आचार्य ने तो बहुत सरल भाषा में ग्रंथ लिखे थे और उन्होंने तो सीधा लिखा था कि भैया इंद्रियों को जीत लो है ना। लेकिन टीकाकारों ने इन शास्त्रों को इतना दुर्लभ कर दिया, इतना कठिन कर गुरु कर दिया, मैंने इतना कठिन कर दिया कि एक सीधा साधा इंद्रिय शब्द था और उस इंद्रिय शब्द में से तीन अर्थ निकाल करके उन्होंने, कौन कौन से तीन अर्थ निकाले उन्होंने कहा, एक तो इंद्रिय, उन्होंने जो जड़ इंद्रिय शरीर दी है वो, दूसरा उन्होंने कहा भाव इंद्रिय, उन्होंने इंद्रियों के माध्यम से होने वाला व्यापार ज्ञान का उसको बोला है भाव इंद्रिय, और वो भाव इंद्रिय के द्वारा जो जानने में आया पदार्थ उसको बोला उन्होंने इंद्रिय के विषय भूत पदार्थ। एक शब्द कितना था, एक शब्द था इंद्रिय, और इंद्रिय शब्द में से आचार्य अमृत चंद्र देव ने तीन अर्थ निकाले, इन तीनों को जीतना, अबे अपन ने इंद्रियों को जीतना माने क्या मान रखा था, इंद्रियों को जीतना माने क्या, कि भाई साहब कान को जीतना माने कान में, है ना, आंखों को जीतना माने आंखें बंद कर लो, यानी हमारा जो पूरा का पूरा चिंतन है वो इन्हीं इन्हीं पद्धतियों में चलता था। इंद्रियों को जीतने की प्रक्रिया, इंद्रियों को जीतने की बातें तो हम करते हैं, लेकिन सच में इंद्रियों को जीतने की प्रक्रिया क्या है? जब तक अनिंद्रिय भगवान आत्मा तुझे विश्व में सर्वाधिक नहीं लगेगा, तुझे इन सबसे पृथक उस अनिंद्रिय भगवान आत्मा का अनुभव दृष्टि ज्ञान नहीं होगा, तब तक इंद्रियों को जीतना नहीं होगा। इंद्रियों को जीतने का मतलब इंद्रियों को तोड़ फोड़ देना नहीं है, जीतने का मतलब ये कि अभी तक हम इंद्रियों के द्वारा जीते गए हैं। इंद्रियों के द्वारा जीते गए मतलब क्या, अभी तक हम इंद्रियाधीन वर्तते हैं, तो इंद्रियाधीन वर्तमान माने इंद्रियों के द्वारा हम जीते गए। अब हम क्या करें, हम अपनी आत्मा के अधीन वर्ते, अपनी आत्मा के आश्रित होकर श्रद्धा ज्ञान परिणति की निर्मल परिणति प्रकट करें, तो उसका नाम इंद्रियों को जीतना है। जैसे नियम सार अपन पढ़ते हैं, बहुत मार्मिक के बाद नियम सार में टीकाकार मुनिराज पद्म प्रभु मलधारी देव अनेक जगह इस शब्द का प्रयोग करते हैं, पांच इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र जिन्हें परिग्रह है। क्या शब्द का प्रयोग किया वहां पे, पांच इंद्रियों के फैलाव रहित, माने शरीर की इंद्रियों को आप मिटा नहीं सकते। क्यों नहीं मिटा सकते, कि शरीर का संयोग तो केवल ही परमात्मा को भी है। अच्छा, जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी और निर्विकल्प दशा नहीं होगी, तब तक इंद्रिय ज्ञान का व्यापार भी रहेगा। क्या कहा, आप मिटा दोगे इंद्रिय ज्ञान के व्यापार का? केवल ज्ञान जब तक नहीं होगा, अथवा ज्ञान अथवा अतिंद्रिय मन अंतर्मुख होकर के निर्विकल्पता में नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है और निर्विकल्प दशा नहीं है, तब तक इंद्रिय ज्ञान का व्यापार भी रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ना हम जड़ इंद्रियों को मिटा सकते, ना हम इंद्रिय ज्ञान के व्यापार को बंद कर सकते, रोक नहीं सकते उसे, और इंद्रिय ज्ञान के विषयभूत जो जगत के पदार्थ हैं, जिसको इंद्रिय कहा गया, तो हम इन जगत के पदार्थों को भी लोक में से तो अलोकाकाश में नहीं भेज सकते। अगर इनको तोड़ने फोड़ने और मिटाने का नाम इंद्रियों को जीतना होता, तो ये कभी संभव ही नहीं था। क्यों, अब इंद्रियों को जीतने में फिर तीनों प्रकार की इंद्रियों को जीतना होगा, तो मेरा प्रश्न ये कि इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को कैसे जीतेंगे आप बताओ? क्या इंद्रियों के जो जो भी इंद्रियों का विषय बनने वाले पदार्थ हैं, उनको उठा उठा के अलोकाकाश में फेंकोगे? कि भाई तुझे जीतने का मतलब क्या है, कि जीतना दो तरह से होता है, कि तुम अपने में आ गए, कि तुम अपने में आ गए और उनका किसी प्रकार का प्रभाव अपने ऊपर नहीं रहा। शरीर में इंद्रियां हैं तो रहे, इंद्रिय ज्ञान का व्यापार है तो रहे, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ हैं तो रहे, मैं तो इन सबसे अधिक अधिक माने भिन्न ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूं। ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा पर अपना लक्ष्य गया तो हमने द्रव्य इंद्रिय को जीत लिया। क्यों, क्योंकि अभी तक द्रव्य इंद्रिय को अपना अंग मान रहे थे, इनके द्वारा होने वाले ज्ञान के व्यापार को अपना ज्ञान परिणमन मान रहे थे और उनके द्वारा ज्ञात होने वाले पदार्थों में अपने पन की भ्रांति पाले हुए थे, तीनों तरह से थे ना, ये था ना, द्रव्य इंद्रिय को अपना माना था, मतलब शरीर को अपना माना तो द्रव्य इंद्रिय को अपना माना था, मेरे आंख, मेरी कान, मेरा नाक, मेरा ऐसा मानते ना, और इनके माध्यम से प्रवर्तने वाले ज्ञान व्यापार को, इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान बोलना पड़ेगा समझाने के लिए, तो उसको भी हम अपना मानते थे, वो अपना, ये मेरा स्वरूप है, जबकि इंद्रिय ज्ञान आत्मा का स्वरूप नहीं हो पाता सिद्ध करेंगे इसे। और इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से जो पर पदार्थ ज्ञान में ज्ञात होते हैं, इंद्रिय ज्ञान में जानने में आते हैं, तो उन पदार्थों में एकत्व का अभिप्राय कर रहे थे। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो सारे अनर्थों का मूल क्या है, प्रवचन सार की 94 नंबर की गाथा में लिखा है, असमान जातीय मनुष्य पर्याय जो कि सर्व अनर्थों का एक मूल है। क्या मतलब, इस शरीर को हमने अपना माना, यहीं से सारे अनर्थ चालू हुए। क्या मतलब, कि जब शरीर को अपना माना तो शरीर के अवयवभूत इंद्रियों को अपना माने बिना नहीं रहेंगे। कोई कहे जी मैं तो शरीर को अपना मानता हूं, आंख ना कान को अपना नहीं मानता, संभव है। और जब इंद्रियों को, जब इन जड़ इंद्रियों को हमने अपना माना, तो इन जड़ इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान का व्यापार होगा, जो कि ज्ञान का वास्तविक स्वरूप नहीं है। देखो ध्यान से, ज्ञान का वास्तविक स्वरूप नहीं है मतलब क्या, कि त्रिकाली ज्ञान का भी वास्तविक स्वरूप नहीं है, और वास्तव में प्रकट ज्ञान का भी वो वास्तविक स्वरूप नहीं है। वो मैं अभी अपना जब भाव इंद्रिय की चर्चा आएगी तो उस बात को बहुत अच्छे से अपन सिद्ध करेंगे। और फिर तीसरा क्या होगा, जो भी पदार्थ हमारे इंद्रिय ज्ञान के विषय बने, भाई ये जितने पदार्थ हैं ये सारे पदार्थ अपने इंद्रिय ज्ञान के विषय बने, इंद्रिय ज्ञान के विषय बने और उनमें हम अपनापन करते हैं, ये मैं, ये मेरा, ये मैं, ये मेरा, ये मैं, ये मेरा, ये मैं, ये मेरा, है ना। और इस तरह क्या हुआ, हम द्रव्य इंद्रियों की गुलामी, भावेंद्रियों की गुलामी और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों की गुलामी में अपना जीवन जी रहे। इसको अपनी भाषा में कहें तो अपन इंद्रियों को जीत नहीं रहे, अभी तक इंद्रियों ने अपने को जीत लिया। इंद्रियों ने अपने को जीत लिया माने क्या, इंद्रियां कहती है जब तक तुम हमें अपना मानते रहोगे तब तक तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तो बोलो, हमने उन्हें अपना माना तो हमें अपनी आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, हम अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने इंद्रियों को जीता या इंद्रियों ने हमें जीता, आत्मा आज तक इंद्रियों ने हमें जीता। और हमारे परमात्मा कैसे हैं, कि हमारे परमात्मा जितेंद्रिय जी हैं, तो उनका भगत भी इंद्रियों का गुलाम नहीं हो सकता। जो अपने इंद्रियों को जीते वो भगवान की वास्तविक स्तुति करता है। भगवान की स्तुति का मतलब क्या, तो भगवान की स्तुति का मतलब ये, जो काम भगवान ने अपने लिए किया खुद के लिए, वो काम हम अपने जीवन में अपने लिए कर दें, उसका नाम भगवान की स्तुति। और भगवान कहे बेटा पूर्व में जाना और हम जा रहे हो पश्चिम में, तो हमने भगवान की स्तुति की, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया। बोलो, अपन बोलते हैं ना पूजा में, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह झूठी मन की वृत्ति। ये भगवान ने कहा कि प्रभु आपने क्या बताया, तो जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, ये तो भगवान का उपदेश। अगर हम ये उपदेश को ऐसा का ऐसा मानते हैं तो हमने भगवान की सही में पूजा की, है ना, और हमने तो एक घंटे बहुत अच्छे से पूजा गाई, दिवाली का मौसम या कोई शिविर का मौसम हो, बहुत अच्छे से पूजा गाई, और कोई आदमी ये कहने के लिए भी नहीं आवे, सारी सभा पूजा गाते समय, स्वाध्याय कराते समय सभा तो झूम उठे, और कोई ये कहे नहीं, एक शब्द नहीं कहे, हाँ क्या गजब, आज तो क्या गाया आपने, आप तो क्या बोला आपने, अगर कोई ये शब्द नहीं बोले तब तक अपने कलेजे को ठंडक नहीं पड़ती। तो बोलो, हमने जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, ये माना है कि नहीं माना है? तो इससे बात तो इंद्रियों की सिद्ध करनी। क्या मतलब कि ये बोलना, ये गाना, ये भाषा वर्ण करना। और अगर कोई बोलने की तारीफ करता है, अगर कोई गाने की तारीफ करता है, वो तारीफ नहीं करता, वो तुम्हारी तारीफ नहीं करता, वो तुम्हारी सत्ता का नाश करता है। क्यों? क्योंकि तुम तो आत्मा हो, और आत्मा ने बोलता है और आत्मा ने गाता है। और उसने कहा, भाई साहब आज तो आपने क्या गाया, आज तो आपने क्या बोला, आज तो मजा आ गया, है ना? उसका मतलब ये हुआ कि वो आपको आत्मा मानता ही नहीं है, वो अभिप्राय में आपको भाषा वर्णा मानता है। इसका मतलब क्या है? उस पर तो जैन दर्शन के तहत दफा 302 नहीं लगनी चाहिए। उसने एक ऐसे तत्व का नाश कर दिया अभिप्राय, भाषा वर्णा बना दिया। और ये अज्ञानी जीव वो तो उसने बनाया, अब ये अज्ञानी जीव भी क्या? हाँ बिल्कुल था आपको। अब जब ऐसी प्रशंसा करे ना, वो प्रशंसा भाषा वर्णना की हो रही है और ये आत्मा प्रसन्न हो रहा है। हाँ क्या लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मुझे कितना मानते हैं। बेटा तू भी अपने को आत्मा नहीं मानता, नहीं आए तो वो आत्मा नहीं मानता, इतनी बात नहीं है। तू भी अपने को आत्मा नहीं मानता, तू भी अपने को भाषा वर्णना मानता है। क्योंकि यदि तू अपने को भाषा वर्णना नहीं मानता होता तो भाषा वर्णना की प्रशंसा से तू प्रसन्न नहीं होता। ठीक है, यही बात है कि तू अपने को भाषा वर्णना मानता है। इसका मतलब यह है कि तू प्रति समय अपने भगवान आत्मा की हत्या कर रहा है। सबसे बड़ा विश्व का हत्यारा प्राणी है अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। एक 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 विचार करो। अब जो भगवान ने जैसा कहा उससे उल्टा मान रहा हो, भगवान ने कहा जब चेतन की सब परिणति प्रभु, अरे ये कहता भाषा वर्णना की क्रिया को अपनी क्रिया मानता है। एक उदाहरण दिया मैंने, सब लगा लेना। तो सच में उसने भगवान की पूजा की या भगवान को गाली दी? बोलो, खाली जे जे नाथ परम गुरु होएगा नाम भगवान की पूजा नहीं है? इस थाली का द्रव्य इस थाली में चला गया, इसका नाम भगवान की पूजा नहीं है? क्यों? क्योंकि हमने इस थाली का द्रव्य इस थाली में गया तो आना देखो मैंने कितना कितना द्रव्य चढ़ाया। लोग चढ़ाते हैं, सज्जूस हैं, वो द्रव्य चढ़ाने की अरे जहां जाए वहां पर द्रव्य की क्रिया का करता अपने को मानता है। जैसे इससे बड़ा अज्ञानी मिथ्या व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो भगवान की स्तुति कर रहा है कि भगवान की अवज्ञा कर रहा है, भगवान की आस्थापना कर रहा है, भगवान की स्तुति कर रहा है। सच्ची करो कि भगवान की आस्थापना कर रहा है तो भगवान की स्तुति कौन करता है? तो भगवान ने क्या किया पहले ये बताइए। अरे इन भगवान ने भगवान बनने के पहली स्टेप में, पहले चरण में इन्होंने क्या किया? तो पहले चरण में इन्होंने इस शरीर को अपना मानना बंद किया, अर्थात अपने शुद्धात्मा में अपना उपयोग लगाया। ये मैं हूं, शरीर को अपना नहीं माना, इंद्रियों को अपना नहीं माना। जब इंद्रियों को अपना नहीं माना तो भावेंद्रियों को अपना नहीं माना, भावेंद्रियों को अपना नहीं माना तो विश्व के सारे पदार्थों को जो भावेंद्रिय के विषय बनते सब को अपना नहीं माना। ध्यान आगे नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या? पर और इंद्रियों से जो तीन अर्थ करेंगे ना इसमें, द्रव्य इंद्रियों से, भाव इंद्रियों से और इंद्रियों के विषय भूत पदार्थों से उपयोग को हटाकर उस शुद्ध चैतन्य में अपने उपयोग को स्थापित किया। और जो आज तक इंद्रियों द्वारा जीते जा रहे थे उन्होंने अब इंद्रियों को जीत लिया। इंद्रियों को जीत लिया माने क्या? तो इंद्रियां मेरा स्वरूप नहीं है। और वो इंद्रियों में तीनों अर्थ ले लिया। जब ऐसा नक्की हुआ तो ये भगवान ने पहले नंबर में अपने जीवन में स्तुति प्रकट की थी और आज वे भगवान बने। कहते वही चीज जब हम भी इस प्रकार इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा हमारा असाधारण लक्षण क्या है, ज्ञान स्वभाव, तो उसके द्वारा आत्मा को अन्य द्रव्यों से भिन्न अनुभव करेंगे, जानेंगे, मानेंगे, तो हम भी जितेंद्रिय जिन होंगे। और जितेंद्रिय जिन होने का मतलब ये जिन देव के जिनेन्द्र परमात्मा होने के मार्ग में हमने पहला कदम धर लिया। इंद्रियों को जीतने का मतलब क्या, उन जिनेन्द्र परमात्मा की बात नहीं, हम जिनेन्द्र, हमने अपने जिनेन्द्र परमात्मा होने के मार्ग में पहला कदम रखा, वास्तव में ये भगवान की निश्चय स्थिति हुई। आगे है ना, हाँ। बाकी तो केवल ज्ञानी परमात्मा का लक्ष्य करके, उनकी ओर विकल्प करके, उनके आत्मा के गुणों का भी विकल्प हम करेंगे, तो प्रभु आपने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये सब है, ये विकल्प हम उनकी ओर करें ना, शरीर की बात तो छोड़ो, उनके आत्मा के स्वरूप का चिंतन मनन करें, तो वो भी शुभ भाव रूप है, वो भी अंदर में अपने भगवान आत्मा की निश्चय स्तुति प्रकट हुई हो, तो उसको भगवान के स्मरण के विकल्प को व्यवहार स्तुति का आरोप आएगा। कब आएगा, अपनी आत्मा की अनुभूति रूप निश्चय भाव स्तुति अपने अंदर में प्रकट हुई हो, तब तो हमें पता पड़ेगा भगवान कैसे होते, और तब उनकी स्तुति का नाम व्यवहार स्तुति कहने में आएगा। और अपनी आत्मा का पता नहीं हो, उसे भगवान के स्वरूप का भी वास्तव में पता नहीं हो, क्यों, क्योंकि ये भगवान स्वरूप आया कहां, जब तक उस भगवान स्वरूप के उद्गम स्थल का पता नहीं होवे, तब तक ये भगवान का भी पता नहीं होता उसे। और ऐसा जीव कदाचित कुल परंपरा से देखा देखी धर्म बाहरी रूप से धर्म बुद्धि से भगवान का स्मरण करे, भगवान का पूजन करे, भगवान का पाठ करे, भगवान की भक्ति करे, सब कुछ करे, गुरुदेव श्री कहते हैं वह राग का भजन करता है। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, राग का भजन करता है, क्यों, क्योंकि वितराग स्वभाव का पता ही नहीं, अपने वितराग स्वभाव का पता पड़े, अपने अनिंद्रिय स्वभाव का पता पड़े, उन परमात्मा का पता पड़े, इसलिए अपनी स्तुति, अपने आप की स्तुति वो निश्चय स्तुति है, और पर भगवान की स्तुति को व्यवहार स्तुति कहते हैं। यहाँ उसमें अपने निश्चय स्तुति की चर्चा चल रही है, यहाँ पे कहते हैं देखिए जीत कर, क्या कहते हैं यहाँ पे टीका में देखिए, इंद्रियों को जीत कर क्या करे, ज्ञान स्वभाव के द्वारा, आत्मा का असाधारण स्वभाव क्या है, आत्मा का असाधारण स्वभाव है ज्ञान स्वभाव, तो उस ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक, अधिक का मतलब होता है भिन्न, अन्य द्रव्य माने अपनी आत्मा के अलावा विश्व के सब आगे उठे। देखो चार पांच इंद्रियों का विषय तो रूपी पदार्थ बनते हैं, ठीक है ना, लेकिन मन का विषय अरूपी पदार्थ ही बनते, आ गया, वो सब अन्य द्रव्यों से भिन्न आत्मा को, आत्मा को जानता है, किसको जानता है, अन्य द्रव्य से भिन्न ज्ञान स्वभाव के द्वारा, मतलब लक्षण क्या, आत्मा को जानने का लक्षण क्या, आत्मा, आत्मा का लक्षण क्या, जिसके द्वारा आत्मा को जानना कि ज्ञान स्वभाव। अब देखो इसमें दो बातें, आत्मा का त्रिकाली लक्षण ज्ञान और आत्मा का वर्तमान लक्षण उपयोग, वो भी उसी जाति का, जैसा सामान्य ऐसा विशेष, प्रकट ज्ञान लक्षण द्वारा ज्ञान स्वभावी आत्मा को जाना जा सकता है, अथवा ज्ञान लक्षण द्वारा विश्व में किसी अन्य द्रव्य के अंदर ये लक्षण नहीं है। और उसमें भी एक बात देखना, ज्ञान स्वभाव माने क्या, जिसमें मेरे ज्ञान का व्यापार पाया वो मेरा लक्षण, दूसरे आत्माओं में ज्ञान स्वभाव है, दूसरे आत्माओं में भी ज्ञान स्वभाव है, विश्व के सभी आत्माओं में ज्ञान स्वभाव है, लेकिन मेरे ज्ञान का वर्तन जिसमें पाया जाए ऐसा उपयोग लक्षण वाला जो मेरा स्वरूप है ना, कि भाई मेरे ज्ञान जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए। ज्ञान दर्शन तो सब में है, लेकिन मेरा ज्ञान दर्शन किसमें पाया जाए? तो मेरा ज्ञान दर्शन भगवान सिद्ध में, भगवान अरिहंत में, किसमें नहीं, तो जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए। कि यहाँ पे ये समझना कि ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक, तो अन्य द्रव्य में अन्य सब आ गया, कोई बाकी नहीं बचा। तो अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा को जानता है, मतलब जानने का लक्षण भी बता दिया। कैसे जानता है? ज्ञान स्वभाव की। कोई कह जी हमें तो पता नहीं करता, अब आप आत्मा को जानने को कह रहे हो, लेकिन आत्मा को पहचाने कैसे? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, किस क्या क्या नहीं पहचानता आत्मा को। ये जो प्रगट ज्ञान है तेरा, ये जो तेरे को जानना 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 की एक धारा चलती है, इंद्रियों की बात छोड़ दो, क्योंकि जानने की एक धारा चलती है, ये तेरे आत्म के आत्मा के ज्ञान स्वभाव का ही तो परिणाम है। ये अपने को जैसे अपने को ये समझो, सूर्य सूर्य की किरण अपने को यहाँ दिखाई दी, कहाँ? जमीन पर पड़ी हुई, जमीन पर सूर्य की किरण प्रकाशित होता हुआ अपन क्या बोलते? दिन उग गया। क्यों? लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है कि नहीं? ज्ञान स्वभाव के द्वारा भगवान आत्मा प्रसिद्ध होता है। आत्मा का त्रिकाली स्वभाव भी ज्ञान, और आत्मा का परिणाम वर्तमान स्वभाव भी ज्ञान, जान है ना। नहीं ज्ञान दर्शन उपयोग में जीव तत्व हूं पहला, और दूसरा अर्थ क्या करते थे पंडित जी उसका? मेरा कार्य ज्ञाता दृष्टा थे। कार्य ये पर्याय रूप लक्षण की बात है, और मैं ज्ञान दर्शन उपयोग में जीव तत्व हूं ये त्रिकाली लक्षण की बात है। बहुत ध्यान से समझना, द्रव्य स्वभाव परम कारणा नहीं भाव, तो उसका लक्षण जो त्रिकाली ज्ञान ज्ञान है, त्रिकाली ज्ञान भी पारिणामिक भाव रूप है, और उस त्रिकाली ज्ञान का वर्तमान उपयोग कौन सा? जानना 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 है ना, किसे जानना, क्या जानना, कब जानना, कैसे जानना, वो नहीं। ज्ञान का लक्षण माने जानना 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 जानना, एक जो जानने की धारा अनादिकाल से चली आ रही, नित्य निगोद में भी जिस धारा का अभाव नहीं हुआ, उस ज्ञान लक्षण को धरती हुई वस्तु, उसका नाम आत्मा। तो वो लक्षण, तो वो लक्षण भी जो उपयोग रूप लक्षण है ना, जानना जानना जानना, उसमें आप मति ज्ञान, सुख ज्ञान, अवधि ज्ञान, मतलब ये सब नहीं देखो, तो जानना 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 कि वो लक्षण भी पर्याय का कारण है। जैसा द्रव्य वैसा पर्याय, उससे वो प्रसिद्ध होता है, जानने में आता है। तू प्रेत गए जान ले, तो जो ऐसे जान लेता है, तो जान लेता है तो उसे उसे माने उसे किसे? ज्ञान स्वभाव से भिन्न इंद्रियों को जीतकर आत्म ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से भिन्न आत्मा को जानता है। ऐसे जीव को जो निश्चय नये में स्थित साधु है, ख्याल में आ गया? वे क्या कहते हैं? वे उसे वे वास्तव में जितेंद्रिय कहते हैं। उसने इंद्रियों को जीता है, किसने? जिसने ज्ञान स्वभाव के द्वारा, ज्ञान स्वभाव के द्वारा अपने आत्मा को, तो ज्ञान स्वभाव वो आत्मा का लक्षण है, उस लक्षण द्वारा आत्मा को अन्य द्रव्यों से भिन्न जान लिया है। अब अन्य द्रव्य में क्या लेना है? अन्य द्रव्य में द्रव्य इंद्रिय लेना है, अन्य द्रव्य में भावेंद्रिय लेना है, और अन्य द्रव्य में इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ लेना है ना। इनके द्वारा जिसने भिन्न जान लिया है उसे वे साधु जितेंद्रिय जिन कहते हैं। इस प्रकार ये बात हुई। अब वो तीन प्रकार की इंद्रियां, उन तीनों प्रकार की इंद्रियों का स्वरूप बताएंगे, और उनको जीतने वाले भगवान आत्मा कैसा है उसकी चर्चा भी। टीका में बहुत विस्तार के साथ और बहुत अच्छे तरीके से आएगी, समझने योग्य चर्चा है। अपन सभी लोग उस चर्चा को अगली स्वाध्याय में ले लेते हैं।
अविनाशी मैं आत्मस्वरूप सहजानंदी।